पैराग्राफ चेंज। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा के अनुसार सूरदास का देहावसान परसौली में संवत 1640 के लगभग ही मानना अधिक समीचीन जान पड़ता है। मोटे तौर पर डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा के अनुसार भी कहा जा सकता है कि ये संवत 1640 विक्रमी के आसपास गुलोकवासी हुए होंगे। डॉक्टर रामरतन भटनागर तथा डॉक्टर वाचस्पति मिश्र ने इस घटना का समय दोपहर माना है। निष्कर्षतः सूरदास का देहावसान 16वीं सती विक्रमी के चतुर्थ दशक में किसी समय हुआ। सूरदास की वार्ता के अनुसार दीक्षा के अनंतर सूरदास जी ने अपना जीवन गोवर्धन में विराजमान श्रीनाथ जी की सेवा में ही बिताया, पर वहां वे रहते नहीं थे, नित्य जाते थे। उनका निवास स्थान परसौली ग्राम में चंद्र सरोवर पर था। पैराग्राफ चेंज। अतः अपनी यह लीला निकट जानकर वे श्रीनाथ जी के मंदिर से आकर चंद्र सरोवर पर लेट गए और श्रीनाथ जी महाप्रभु वल्लभाचार्य और गोसाई विट्ठलनाथ का ध्यान करने लगे। उधर आरती काल में उन्हें अनुपस्थित जानकर गोसाई जी उनका अंतिम समय समझ गए और नंददास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास के साथ उनके समीप पहुंचे। सबसे अंत में खंजन नयन सुरंग रसमाते गाकर उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। शीर्षक कृतित्व। सूरदास अंधे कवि थे, इस कारण वे अपनी कविता नहीं लिख सकते थे, इसलिए वे कीर्तन करते थे। जो पद लिख लिए गए होंगे वे रह गए होंगे, अन्यथा शेष स्मृति के गर्भ में विलीन हो गए। 84 वशवन की वार्ता में उल्लेख मिलता है, सूरदास जी ने सहस्रावधि पद किए हैं, ताको सागर कहिए। स्वामी हरिराय जी कृत सूरदास की वार्ता के अनुसार सूरदास जी ने लक्षावधि पद किए हैं। निसंदेह विद्वानों में सूर के पदों के संदर्भ में मतैक्यता नहीं है, सभी ने अलग अलग मत दिए हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने सूरचरित पदों की संख्या 6000 मानी है, तो सुन निर्णय के लेखकों ने अपनी विशिष्ट गणना पद्धति से उनके पदों की संख्या 13350 निर्धारित की है। इनके अतिरिक्त लीला संबंधी पद और भी हैं, इस प्रकार उनकी संख्या 1,25,000 से अधिक पहुंचती है। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा उनकी गणना पद्धति से सहमत नहीं है, पर वे सूरदास द्वारा उचित 1,25,000 पदों की संख्या में अविश्वास नहीं करते। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सूर की 16 रचनाओं की सूची दी है, जो इस प्रकार है। पृष्ठ संख्या 19। पहला, गोवर्धन लीला बड़ी। दूसरा, दशम स्कंद टीका। तीसरा, फाल लीला। चौथा, पद संग्रह। पांचवा, प्राण प्यारी। छठा, ब्याहलो। सातवां, भागवत। आठवां, सूरपचीसी। नौवां, सूरदास जी का पद। दसवां, सूरसागर। ग्यारहवां, सूरसागर सार। बारहवां, एकादशी महात्म्य। तेरहवां, राम जन्म। चौदहवां, सुरसारावली। पंद्रहवां, साहित्य लहरी। सोलहवां, नल दमयंती। सुर निर्णय के लेखकों ने अधोलिखित 7 रचनाओं को अधिक प्रमाणित माना है, जिसमें पहला सुरसरावली, दूसरा सुरसागर, तीसरा सुरसाठी, चौथा सुरपचीसी, पांचवा सेवाफल, छठवां साहित्य लहरी और सातवां विनयादि के स्फुट पद प्रमुख है। सुर साहित्य के मर्मज्ञ डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा के अनुसार सूरदास के अन्य 25 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनमें तो कुछ सुरसागर के अंश हैं और कुछ अन्य कवियों के भी है। सूची इस प्रकार है, पहला सुर सरावली, दूसरा भागवत काव्य, तीसरा सुर रामायण, चौथा गोवर्धन लीला, पांचवा भवन गीत, छठा प्राण प्यारी, सातवां सुर साठी, अठवां विनय आदि के स्फुट पद, नौवां एकादशी का महात्म्य, दसवां साहित्य लहरी, ग्यारहवां दशम स्कंद भाषा, बारहवां मान लीला, तेरहवां नागलीला, चौदहवां दृष्टिकूट के पद, पंद्रहवां सुरपचीसी, सोलहवां नल दमयंती, सत्रहवां सुरसागर, अठारहवां सुरसागर सार, उन्नीसवां राधा रसकेली कौतूहल, बीसवां दान लीला, इक्कीसवां ब्याहलो, बाईसवां सुरशतक, तेईसवां सेवा फल, चौबीसवां हरिवंश टीका और पच्चीसवां राम जन्म। पैराग्राफ चेंज। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने केवल सुरसागर, सुरसरावली तथा साहित्य लहरी को ही प्रमाणित रचना माना है तथा प्राण प्यारी को संदिग्ध। सुरसागर तो सर्वमान्य रूप से प्रमाणित है, परंतु कतिपय आधुनिक आलोचक सुरसरावली और साहित्य लहरी को भी प्रमाणित नहीं मानते। सेवाफल नामक अत्यंत छोटी रचनावली को कमोबेश इन्हीं की सिद्धि होती है। अतः सूरदास की इन तीनों रचनाओं का संक्षिप्त परिचय उल्लेख करना आवश्यक होगा। पहला, सुरसागर। यह सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण और विशालतम रचना है। इसके महत्व का अनुमान स्वामी हरि राय जी की अधोलिखित उक्ति से लगाया जा सकता है। तामे ज्ञान वैराग्य के न्यारे नारे भक्ति भेद अनेक भागवत सो इन सबन की लीला का वर्णन किया है। सूरदास के पदों का संकलन उनके जीवन काल में ही प्रारंभ हो गया था। वल्लभाचार्य का शिष्यत्व ग्रहण के पूर्व की उनकी रचनाएं संभवतः संकलित न हुई होंगी। दीक्षा ग्रहण के अंतरंतर जब वे श्रीनाथ जी के कीर्तन के पद नियमित रूप से गाने लगे होंगे, तब उनका संकलन होने लगा होगा। जब श्री कृष्ण के स्वरूप गोवर्धन से बाहर जाने लगे, तब नित्य कीर्तन और वर्षोत्सव के पदों के संग्रह की विशेष रूप से आवश्यकता पड़ी होगी। वर्तमान सुरसागर के पदों के अनेक संग्रह मिलते हैं। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने इनके लगभग 125 हस्तलेखों की सूची दी है। सुरसागर अनेक स्थानों से मुद्रित हुआ है, जिसमें अब तक की खोजों के अनुसार दो प्राचीन प्रतियां सन 1860 की हैं, जो दिल्ली के इलाही प्रेस तथा मुदेडल उलूम प्रेस से छपी है। यद्यपि अब वे प्रतियां नहीं मिलती। पृष्ठ संख्या 20। उपलब्ध आरंभिक संस्करणों में दो संस्करण महत्वपूर्ण हैं। पहला, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित। यह सन 1863 ईस्वी यानी संवत 1920 विक्रमी में प्रथम बार लीथो में प्रकाशित हुई, फिर टाइप में, जिसके प्रारंभ में 51 पृष्ठों में सुरसरावली भी है। यह लगभग 700 पृष्ठों का ग्रंथ है। यह भी कृष्णानंद व्यास राग कल्प द्रुम के एक खंड का पुनर्मुद्रित रूप है। इसके दो भाग हैं, पहला नित्य कीर्तन के पद, दूसरा लीला के पद। कीर्तन पदों में अन्य अष्टछापी कवियों के पद भी है। दूसरा, वेंकटेश्वर प्रेस बंबई से प्रकाशित। पहले यह संवत 1953 विक्रमी में प्रकाशित हुआ था। इसमें भी आरंभ में सुरसरावली है। संवत 1980 विक्रमी में प्रकाशित संस्करण में 40 से 32 पदों की संख्या बढ़ गई है। ये अत्यंत प्राचीन दोनों प्रतियां क्रमशः संग्रहात्मक और द्वादश स्कंधात्मक है। अब ये दोनों संस्करण भी प्रायः अलभ्य हो गए हैं। इसके पश्चात नागरी पाषाणी सभा वाराणसी ने सुरसागर के द्वादश स्कंधनात्मक रूप में दो भागों में छापा है। इसकी सामग्री बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने व्यवस्थित की थी, पर थोड़ा ही मुद्रण होने के पश्चात उनका देहावसान हो गया। फिर सभा ने इसे डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी के संपादकत्व में संवत 2005 से 2007 तक प्रकाशित किया है। इसमें 4937 पद हैं। अंत में 203 तथा 200 पदों में दो परिशिष्ट भी है। अब यही संस्करण प्रमाणित माना जाता है। लोक भारती इलाहाबाद से पांच खंडों में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त द्वारा संपादित सुरसागर प्रकाशित हुआ है। सुरसागर का प्रथम द्वितीय भाग कृष्ण लीलात्मक है तथा 3, 4 एवं पांचवा भाग द्वादश स्कंधात्मक है। पैराग्राफ चेंज। यह ग्रंथ भागवत पुराण का अनुवाद नहीं है। कुछ लोगों की धारणा है कि इसमें अन्य स्कंधों की कथा तो चलते रूप में है, परंतु दशम स्कंद की कथा जो कृष्ण लीला से संबंधित है, कवि द्वारा बड़े विस्तार, सूक्ष्म कल्पना और तन्मयता से भाव विभोर होकर लिखी गाई गई है। इसमें श्री कृष्ण लीला के रूप, चित्रण, बाल लीला, दान लीला, मान लीला, गोपियों के साथ विविध क्रीड़ाओं, रास लीला, राधा कृष्ण प्रेम, गोपिका वियोग, गोपिका उद्धव संवाद, निर्गुण के खंडन, सगुण भक्ति का ऐसा मनोहारी चित्रण किया गया है कि पाठक उसमें अवगाहन करके लोकोत्तरानंद में निमग्न हो जाता है। कवि ने श्री कृष्ण लीला वर्णन के प्रसंग में प्रभूत नवीन उद्भावनाएं की है, जिनमें कुछ के बीज तो पूर्ववर्ती साहित्य में हैं और कुछ पूर्णतः मौलिक है। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर गुप्त ने इन उद्भावनाओं को अधोलिखित श्रेणियों में विभाजित किया है। पृष्ठ संख्या 21। पहला, बाल संस्कार। दूसरा, सामान्य शिशु लीलाएं। तीसरा, रूप वर्णन तथा प्रसाधन। चौथा, चौर्य लीलाएं और नटखटपन। पांचवा, गोचारण लीलाएं। छठवां, विविध क्रीड़ाएं, सातवां लोक मंगल, परक कथाएं। अतः काव्यात्मक दृष्टि से यह ग्रंथ बहुत उच्च कोटि का है। इसमें वर्णित बाल लीला तो अनुपम है, सूरदास के यश का आधार मात्र यही ग्रंथ समर्थ है। दूसरा, सुरसरावली। यत्र तत्र इस रचना का पूरा नाम सुरसागर सरावली और सुरसागर सार भी मिलता है। यद्यपि इस ग्रंथ की कोई पांडुलिपि नहीं मिली है, परंतु नवल किशोर प्रेस लखनऊ तथा वेंकटेश्वर प्रेस बंबई से प्रकाशित सुरसागर के संस्करणों में सूरदास की मुद्रित प्रतियों का विवरण यह ग्रंथारंभ में ही छपी है। संवत 1880 विक्रमी में गुजरात के दयाराम भाई नामक भक्त कवि ने इसका गुजराती भाषा में अनुवाद किया था, जो कालांतर में प्रकाशित हो गया। ग्रंथारंभ में बंदो श्री हरिपद सुखदाई टेक से आरंभ होने वाला एक पद है, जो सुर सागर के प्रथम पद का थोड़ा परिवर्तित रूप है। फिर खेलन यही विधि हरि होरी टेक है, तब पश्चात द्विपदियां आरंभ हो जाती है, जिनकी कुल संख्या 1107 मिलती है। पैराग्राफ्स चेंज। यह रचना आद्यत्य होली क्रीड़ा के रूपक के रूप में वर्णित है, जिसे होली रास कुल कहा जा सकता है। इसकी रचना संवत 1602 विक्रमी में मानी जाती है। निसंदेह यह स्वतंत्र रचना है, इसे सुरसागर की सूची नहीं कही जा सकती। निसंदेह जयदेव ने यदि बसंत रास लीला का आख्यान किया है, तो सूर ने होली रास लीला का। संवत 2014 में श्री प्रभुदयाल मित्तल ने इसका प्रमाणित संस्करण निकाला है। कालांतर में संवत 2027 विक्रमी में डॉक्टर मनमोहन गौतम ने इसका सटीक संस्करण पुनः प्रकाशित कराया है, किंतु अब ये दोनों प्रतियां अलभ्य हो गई हैं। इसी ग्रंथ का सांगोपांग विवेचन इस कृति का अभिप्रेत है, अतः अग्रिम अध्यायों में सविस्तार विवेचन उल्लेखित है।